భగవతే వాసు. శ్రీ చైతన్య చరితామృత ఆదిలీల అధ్యాయ 2 శ్లోక క్రమాంక 117. సిద్ధాంత బోలియా చిత్తె నా కరో ఆలస్, ইহা হইতে কৃষ্ণ লাগে সুদৃঢ় মানস। সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর আলস, ইহা হইতে কৃষ্ণ লাগে সুদৃঢ় মানস। সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর আলস, ইহা হইতে কৃষ্ণ লাগে সুদৃঢ় মানস। অনুবাদ: জিজ্ঞাসু কো চাহিয়ে কে এসে সিদ্ধান্তোঁ কি ব্যাখ্যা কো বিবাদাস্পদ মানকর উনকি অপেক্ষা না করে, ক্যোঁকি ऐसी व्याख्याओं से मन दृढ़ होता है। इस तरह उसका मन श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त होता है। तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा, ऐसे अनेक जिज्ञासु हैं जो भगवद गीता पढ़ने के बावजूद अपूर्ण ज्ञान के कारण कृष्ण को सही ढंग से नहीं समझ पाते और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वे सामान्य ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मनुष्य को कृष्ण विषयक सत्य समझने में विशेष सतर्क रहना चाहिए। यदि आलस्यवश कोई व्यक्ति कृष्ण के विषय में अंतिम रूप से नहीं समझ पाता तो उसे भक्ति संप्रदाय के विषय में भ्रांति बनी रहेगी। उसी तरह जैसे कि अपने को प्रगत भक्त घोषित करने वाले मुक्तात्माओं द्वारा प्रदर्शित दिव्य लक्षणों का अनुकरण करते हैं। यद्यपि अधीक्षित व्यक्ति को भक्त बनने के लिए प्रेरित करने के लिए विचारों तथा तर्कों का सहारा लेना सर्वोपयुक्त विधि है, लेकिन भक्ति में लगे नव दीक्षितों को शास्त्रों, प्रामाणिक भक्तों तथा गुरुओं के अनुसार सतर्कता के साथ कृष्ण को समझना चाहिए। ऐसे महापुरुषों के मुख से कृष्ण के विषय में श्रवण किए बिना श्री कृष्ण के भक्ति में प्रगति नहीं हो पाती। शास्त्रों में भक्ति प्राप्त करने के 9 साधनों का उल्लेख है, जिसमें सबसे पहला साधन श्रवण करना है, यानी आप श्रवण कर रहे हो। भक्ति का बीज श्रवण तथा कीर्तन के जल से सींचे बिना अंकुरित नहीं होता। मनुष्य को चाहिए कि आध्यात्मिकत प्रगत साधनों से विनीत होकर दिव्य संदेश का प्राप्त करे और अपने तथा अपने श्रोताओं के लाभ के लिए उसी संदेश का कीर्तन करे। जब ब्रह्मा ने अनुभववादी दर्शन के अनुशीलन तथा कार्यक्रमों से रहित शुद्ध भक्ति की स्थिति में वर्णन किया तो उन्होंने भक्ति मार्ग पर चलने वाले व्यक्तियों के लिए श्रवण करने की विधि की संस्तुति की। स्थाने स्थित श्रुतिगताम तनुवांग मनोभिर ये प्रायशो अजित अजितो, वो श्लोक है। ज्ञाने प्रयास उदपास्य, ऐसे मुक्तात्मा जो वास्तविक दिव्य ध्वनि का उच्चारण करते हैं उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए मनुष्य भक्ति की सर्वोच्च अवस्था तक पहुंच जा सकता है और इस तरह महाभागवत बना जा सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को उपदेश दिया, उससे हम सीखते हैं कि शास्त्र युक्ते सनिपुणा दृढ़ श्रद्धा यार उत्तम अधिकारी से ही तारे संसार। जो व्यक्ति शास्त्रों के सिद्धांतों को समझने में निपुण होता है और जो भगवान के लिए पूर्णतः समर्पित हो जाता है वही अन्यों को भवबंधन से छुड़ाने में समर्थ है। उपदेशामृत में श्रील रूप गोस्वामी उपदेश देते हैं कि भक्ति योग में तेजी से प्रगति करने के लिए मनुष्य को अत्यधिक चुस्त रहना चाहिए और शास्त्रों में निर्दिष्ट तथा गुरु द्वारा पुष्ट कर्तव्यों को संपन्न करने में अध्यवसाय रखना चाहिए। मुक्तात्माओं के मार्ग तथा शुद्ध भक्तों की संगति को स्वीकार करने से ऐसे कार्यों में बढ़ोतरी होती है। ऐसे नकलची भक्त मतलब जो नकल करते सिर्फ बाहर से, जो अपने आप को महाभागवत के रूप में विज्ञापित करना चाहते हैं और इस तरह पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुकरण तो करते हैं किंतु सिद्धांततः उनका अनुसरण नहीं करते, उन्हें श्रीमद् भागवत के शब्दों में पाषाण हृदय कहा गया है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उनकी पाषाण हृदय दशा का वर्णन इस प्रकार किया है। बहिरश्रु पुलकयो हो सतोरपि हृदयम न विक्रियेत तदश्मसारम इति कनिष्ठाधिकारिणाम एवं अश्रुपुलकादि मत्वेपि अश्मसार हृदयतया निंदैषा। जो लोग अभ्यासवश अश्रु गिराते हैं किंतु जिनके हृदय नहीं बदले होते वे निम्न कोटि के पाषाण हृदय भक्त कहलाते हैं। नकली विधि से प्रेरित होकर उनका नकली चिल्लाना सदैव निंदनीय है। उपयुक्त हृदय में वांछित परिवर्तन भक्ति मार्ग के लिए कुछ भी हितकर न करने की वितृष्णा से होता है। ऐसा हृदय परिवर्तन लाने के लिए श्री कृष्ण तथा उनकी शक्तियों के विषय में निर्णायक व्याख्या होनी परम आवश्यक है। भक्त सोच सकते हैं कि आंसू गिराने से ही मनुष्य को दिव्य पद प्राप्त हो सकता है, चाहे उसके हृदय में वास्तविक परिवर्तन हुआ हो या नहीं, किंतु दिव्य अनुभूति के बिना ऐसा अभ्यास व्यर्थ है। दिव्य ज्ञान के सिद्धांत से विहीन नए भक्तगण सोचते हैं कि बनावटी आंसू गिराने से उनका उद्धार हो जाएगा। इसी तरह से अन्य कनिष्ठ भक्त सोचते हैं कि पूर्ववर्ती आचार्यों के ग्रंथों का अध्ययन उचित नहीं, जिस तरह शुष्क दर्शनों का अध्ययन उचित नहीं, किंतु पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करते हुए श्रील जीव गोस्वामी ने षट संदर्भ नामक ग्रंथ में शास्त्रों के निष्कर्षों को 6 मान्यताओं के रूप में रखा है। ऐसे छद्म भक्त जिन्हें ऐसे निष्कर्षों का बहुत कम ज्ञान होता है, वे स्वरूप सिद्ध भक्तों द्वारा प्रदत्त भक्ति के उपयुक्त निर्देशों को स्वीकार करने में उत्साह नहीं दिखलाते हैं। ऐसे छद्म भक्त कनिष्ठ भक्त उन निर्विशेषवादियों के तुल्य हैं जो भक्ति को सामान्य सकाम कर्मों से श्रेष्ठ नहीं मानते। चैतन्य महिमा जानी ये सब सिद्धांते चित्त दृढ़ होइया लागे महिमा ज्ञान होइते। ऐसे निर्णायक अध्ययन के द्वारा मैं चैतन्य महाप्रभु की महिमा को जानता हूं। मनुष्य इन महिमाओं को जान लेने से ही बलि बनता है और उनके अनुराग में स्थिर होता है। सिद्धांत बोलिया चित्ते ना करो आलस इहा होइते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। जिज्ञासु को चाहिए कि ऐसे सिद्धांतों की व्याख्या को विवादास्पद मानकर उनकी उपेक्षा न करें, क्योंकि ऐसी व्याख्याओं से मन दृढ़ होता है, इस तरह उसका मन श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त होता है। ये वाक्य श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी के श्री चैतन्य चरितामृत के शुरुआत में है, जहां पहले 4 अध्यायों में बहुत ही गहराई में सिद्धांतों के आधार पर वो समझाते हैं किस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। और उसके अंत में ये लिखते हैं कि ये सिद्धांत हमें लग सकता है, हमारी बुद्धि को थोड़ा परीक्षा करती है, ऐसा है महत्त्व, ऐसा है पंच अलग अलग तत्व, किस तरह से सृष्टि कैसा उत्पन्न होता है, भगवान के अलग अलग अवतार, ये सब भलग जो उनके तत्व हैं, अवतार तत्व हैं, गुणावतार शक्तावेश अवतार, उनके भी अलग अलग प्रकार के, तो स्वाभाविक रूप से हम इन सिद्धांतों को पढ़ने में आलस्य करते हैं। हमको एक अच्छा अनुभव चाहिए, बस भक्ति बनी रहे, लीला सुनते रहे, आनंद केवल आनंद कंद, बहुत अच्छी बात है। तो फिर सिद्धांतों की क्या जरूरत है? भावनाएं और भावुकता, इसमें अंतर है। भावनाएं हैं हमारे, ये भावनाएं जो हैं ये आत्मा की खासियत है, और अलग अलग भावनाएं, रस रस आस्वादन, अलग अलग रिश्ते नातों जो है हमारे, उसमें अलग अलग भावनाएं, ये सात पांच प्रमुख रस, सात गौण रस, हर एक व्यक्ति रस आस्वादन करना चाहता है निश्चित रूप से। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वानि, हर एक व्यक्ति रस की आस्वादन करता है, क्योंकि जीव का स्वरूप है आनंद, आनंदमयोभ्यासात्। भगवान आनंदमय है और इसीलिए हम उनके अंश होने के कारण गुणात्मक रूप से हम भी आनंद के पीछे हैं, हर एक व्यक्ति आनंद के पीछे है। ये आनंद जो है अनुभव होती है भावनाओं के द्वारा, फीलिंग्स, प्रेम खास करके। ये दो व्यक्तियों के बीच में जो आपस का प्रेम होता है उसमें कितना भावनाएं, मतलब वॉल्केनो ऑफ इमोशंस, इमोशंस आर रसास, अलग अलग रस हो, अलग अलग रस, साक्ष्य रस। लोग दोस्तों के बीच कितना अच्छा लगता है, दोस्तों के साथ और पुराने मित्र को मिले कितना अच्छा लगता है, उसे मिलने से आनंद आता है। वात्सल्य रस, अपने माता पिता के साथ आदान प्रदान, बड़े भाई या बड़े बहन के साथ आदान प्रदान, या प्रभु और दास उनके साथ आदान प्रदान, और माधुर्य पति पत्नी का प्रेममय आदान प्रदान। हर एक व्यक्ति रस के पीछे, वीर्य रस वो भी एक प्रकार का रस, भयानक रस वो बोलेंगे उसमें क्या भयानक है, लोग पैसे देके जाते हैं डरने के लिए, हॉरर मूवीज देख के डर जाता है, कि कितने लोग चिल्लाने लगते हैं, कितने लोग बेहोश हो जाते, फिर भी पैसे देके जाते, मालूम है बहुत डरावना है, भूत आएगा, कहीं भी घुसेगा, कुछ भी आएगा, स्क्रीन में एक आए तो। ये सारे रस, रस का आस्वादन करने स्वाभाविक है, पर जब व्यक्ति उसी रस को खोज में भक्ति में आता है, और भक्ति में भी केवल ऊपरी ऊपरी तरीके से सुपरफिशियली उस रस का आस्वादन करने का प्रयास करता है, अच्छी बात है, इमिटेशन ऑफ ए गुड थिंग इज एनकरेज्ड, चलेगा। पर जीवन भर इस रस को आस्वादन करते रहना, गहराई में जाकर इस रस को आस्वादन, बहुत उच्च कोटि के स्तर पर गोपी भाव रस अमृत अवधि लहरी कल्लोल मग्न मुहूर, गोपी भाव रस अमृत अवधि, सिंधु है ये अवधि लहरी, उसके लहरों में कल्लोल मग्न हो, एकदम डुबकी लगा रहे हो। रसमालयम, श्रीमद् भागवतम रसमालयम, रस का परम। देखते हैं भागवत में कितने सारे ऐसे सिद्धांत आते हैं, कई स्कंद, दूसरे स्कंद में, पहले स्कंद में भी कितने सारे सिद्धांत तत्व आते हैं। भगवान की सृष्टि कैसे हुई, पहले प्रधान, प्रधान से फिर पंच ओ, सारे तत्व आए, 24 तत्व, उसमें से किस तरह से सृष्टि होती है, तो ये सब थोड़ा बोलिए ये सब क्या पढ़ना है, तो आलस्य हो जाता है, उसको हम लोग स्किप कर देते, फिर दूसरा लीला में चलो। तो ये भावनाएं अगर सिद्धांत पर आधारित न हो तो स्वाभाविक है कि हम भावुक बन जाएंगे, क्योंकि ये भावनाएं हर एक व्यक्ति में प्रस्तुत होती है। जहां तक रोने का सवाल है, कभी कभी फिल्म में जाके भी लोग रोते, हीरो और हीरोइन बिछुड़ गए तो वो बेचारे रोते रहते, रुमाल लेके जाते बहुत सारे, तो रोना एक प्रकार का रस है, पर आधार नहीं होने के कारण वो भावुक बन जाता है। जब अर्जुन दया दिखा रहा था, बेचारे ये मेरे ही रिश्तेदार हैं, इनको मैं नहीं मारूंगा, भगवान ने डांटा, अशोचान अन्वशोचस्तम प्रज्ञावादां च भाषसे गतासु नगतासुश्च न अनुशोचन्ति पंडिता। पंडित लोग ऐसे शोक नहीं करते, जिस चीज के लिए शोक करना है उस चीज के लिए तुम नहीं कर रहे हो अर्जुन, और जिस चीज के लिए शोक नहीं करना है उस चीज के लिए तुम शोक करते हो, यह भावुकता का लक्षण है। जिस चीज के लिए हमको शोक करना है उसके लिए हम नहीं करेंगे। मनुष्य जन्मों पाइया राधा कृष्ण न भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो। एक एक क्षण मनुष्य जीवन का जा रहा है, जो करोड़ों रुपयों से खरीदा नहीं जा सकता, उसके लिए शोक नहीं कर रहे। पर हम कुछ मार्केट में खरीदने गए, 4 रुपये उल्टा उसने ज्यादा खरीद दिया, रोते रहते, ज्यादा दे, पैसा ज्यादा ले लिया उसने, नुकसान हो गया मेरा, 10 रुपये का नुकसान हो गया, थोड़ा पैसा ज्यादा दे दिया। अरे जिसको बाद में कमाया जा सकता है दूसरी बात है, पर ये फिर से वापस नहीं आ सकता मनुष्य योनि। तो जिस चीज के लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए हम शोक कर रहे हैं, जो वैसे भी जाने वाले हैं, जातस्य हि ध्रुव मृत्युर, उनके लिए हम लोग शोक करते रहते, ऐसा हो गया ऐसा हो गया, और वो शोक करते 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 शोक शोचति न कांक्षति ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, शोक में आधा जीवन चला जाता है, और आकांक्षा करने में, किस चीज की आकांक्षा, इस भौतिक संसार में चीजों को एकत्रित करने की आकांक्षा, तो आधा जीवन शोक में और आधा जीवन आकांक्षा, किस चीज की आकांक्षा, दोनों माया, दोनों माया, दोनों का आधार जो है माया, माया यानी व्हाट इज नॉट, उसका कुछ आधार ही नहीं है, उस आधार पर हमारा नश्वर होता जीवन। शोक करना बुरा नहीं है, शोक करना चाहिए, आकांक्षा रखनी चाहिए, कबे होबे बोलो सही दिन आमार, आचार्य भी शोक करते हैं, जे अनिल प्रेमाधन करुणा प्रचुर हेनो प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, पाषाणे कुटीबो माथा अनले पासीबो, पत्थर पे सर पटक के मैं मर जाऊंगा, अग्नि में घुस जाऊंगा, शोक करते, ऐसा शोक। जब रामानुजाचार्य शरीर छोड़कर जा रहे थे, उनके सारे शिष्यों ने निर्णय लिया, हम सब इनके साथ चले जाएंगे, सबके साथ सुसाइड कर लेंगे, सबके साथ आत्महत्या कर लेंगे, भुला के बोलना पड़ा रामानुजाचार्य, समझाना पड़ा, नहीं नहीं ऐसा मत करो, तुम सचमुच में मुझे प्रेम करते हो, वैसे तो जाने ही वाला है, अपने आप शरीर जाएगा, अपना अपना सबको समय आएगा, उस समय तक जो जो दिया है समय, उस समय का सदुपयोग करो, सचमुच में ये तुम मुझे मुझसे प्रेम दिखा रहे हो, तो ये शोक एक प्रकार का एक्सटेसी, दिव्य आनंद है ये शोक भी, सेपरेशन फ्रॉम कृष्ण, हे राधे व्रज देवी के चललित, हे नंद सुनो कुता, रोते रोते रोते, विष्णुप्रिया रोती थी हमेशा, एक एक गौरांग का नाम लेते लेते एक एक, और जितना वो जितने दाना थे उसी को स्वीकार करती थी वो हर रोज बस। गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु के विरह में रोते रोते उनका भागवत पूरा मिट गया था। श्रीनिवास आचार्य रोना पूरा ही रोना, हमारे सारे आचार्य उनकी अंतिम मतलब अंतिम इच्छा है कराएं राधा रानी, हमेशा पूरे ब्रजवासी रोते ही रहे कृष्ण के विरह में। पर ये रोना और किसी के गुजर जाने पर रोना ये अलग है। अरे चला गया, कहां चला गया, तू भी जिंदा है वो भी जिंदा है, वो कहीं और जा रहा है उसके लिए तू रो रहा है बस। तो अशोचानन वशोचस्तम, इस तरह से भक्ति में आने के बाद भी अच्छा। और आकांक्षा, किस चीज की आकांक्षा करते हैं, हर एक व्यक्ति आकांक्षा करता है, पर वो आकांक्षा भक्ति में आने के बाद सिद्धांत के आधार पर आकांक्षा होनी चाहिए। कबे होवे बोलो शहीद नामार, गौरांगा बोलिते होवे पुलक शरीर, हरि हरि बोलिते नयने वो वेनीर, ये आकांक्षा होनी चाहिए। कब वो दिन आएगा जब केवल कृष्ण का नाम लेने से मेरे आंखों से आंसू बहेंगे, रस का आस्वादन होगा। तो ये सिद्धांत को स्थापित करने के लिए ये महान आचार्यों का योगदान है, इन्होंने इतने सारे पुस्तक लिखे। राधानाथ महाराज शुरू शुरू में 1991 में जब आए अपने मंदिर में गोपीनाथ मंदिर में, तो उन्होंने खास करके ब्रह्मचारियों के लिए क्लास शुरू किया। मतलब भागवतम क्लास तो सुबह होता है, शाम को गीता क्लास होता था, कभी कुछ होता था कभी नहीं होता था, पर उसके अलावा उन्होंने बोला ब्रह्मचारी क्लास एक ये नया कॉन्सेप्ट जो हम लोग, और उसको बहुत विरोध था उस समय। नहीं 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 नहीं, प्रभुपाद ने कहां बोला है वो सब, बस कुछ लोगों का आर्ग्यूमेंट था उस समय, प्रभुपाद ने कहां बोला है क्लास, बस भागवतम क्लास है उसमें ऊपर हो जाता है बस। बोले नहीं, ब्रह्मचारियों को भी एक क्लास होना ही चाहिए। और फिर उन्होंने बोला क्यों, बोले मैंने पिछले 20-30 साल में मैंने देखा है कि साधारणतः ब्रह्मचारी लोग दो कारण के लिए छोड़ के जाते हैं भक्ति पे, या एक संस्था से दूसरे संस्था, एक गुरु से दूसरे गुरु, ऐसे चले जाते हैं वो लोग। बोले क्यों जाते हैं, एक तो अगर उनको प्रेम नहीं मिलता, हर एक व्यक्ति प्रेम का भूखा है, एवरीवन नीड्स एनकरेजमेंट अप्रिसिएशन लविंग रेसिप्रोकेशन, हर एक को चाहिए थोड़ा प्रोत्साहन चाहिए, हर एक को थोड़ा अप्रिसिएशन चाहिए, प्रेम चाहिए। अगर वो प्रेम नहीं मिले तो क्या है, किस लिए हम लोग आ रहे हैं, एक। दूसरा कारण है छोड़ने का, तो इसलिए वो बोले ये प्रेम अगर प्राप्त होना है तो हर एक चीज साथ में करना चाहिए, इसीलिए उन्होंने नियम बनाया, साथ में आके मंगल आरती करो, साथ में बैठ के प्रसाद लो, साथ में बैठ के जप करो, मुझे पूछो मत उसमें क्या शक्ति है, पर साथ में करने से एक ऐसा डीप बॉन्डिंग, ऐसा एक एकता आ जाती है भक्तों में जो कोई भी परिस्थिति में वो अलग नहीं होता, क्योंकि कृष्ण के संपर्क में हम लोग एक साथ आ रहे हैं, कीपिंग कृष्ण इन द सेंटर। भले हमारा भिन्न मत हो, हमारा सोचने का विचार अलग हो, हमारा बद्ध अवस्था कंडीशनिंग अलग हो, हमारा नेचर अलग हो, हमारा बोलने का तरीका अलग हो, कुछ भी हो, पर हम लोग साथ में हैं क्योंकि हम लोग सब प्रभुपाद की सेवा के लिए, गुरु की सेवा के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए हम लोग आए हैं साथ में। तो ऐसा जो एक साथ में आना, वो साथ साथ में करने से होगा, साथ में कीर्तन करना, साथ में तो इवन परिवार में कम से कम एक खाना पूरा परिवार साथ में खाना चाहिए, एक नियम बना लेना चाहिए। आध्यात्मिक तो दूर की बात, इवन भौतिक जीवन में ए फैमिली दैट डाइन्स टुगेदर शाइन्स टुगेदर। एक खाना कम से कम पूरे परिवार के लोग एक साथ बैठ के खाना चाहिए। और हम देखिए उसमें देखते हैं एक प्रकार का एक घनिष्ठता आ जाती है। तो ये एक कारण था, बोले साथ में करो, साथ में आके जप करो, साथ में आके कीर्तन करो, साथ में प्रसाद लो। नहीं तो होटल जैसा, कोई भी आएगा अपना अपना बैठेगा, खाएगा, जाएगा, अपना अपना करेगा, जप करके जाएगा, अपना नहीं। तो बोले ये पढ़ाई भी साथ में बैठ के करो। तो एक प्रकार का वो कृष्ण के केंद्र में रख के आपस में सब साथ में आएंगे। और दूसरा बोले, दूसरा छोड़ के इसलिए जाते हैं कि इससे भी ऊंचा कुछ चीज मिल रहा है, या कुछ शंकाएं आ जाती है उसको इसलिए छोड़ के चले जाते हैं। ये सचमुच में है क्या भगवान, जैसे यहां बोल रहे हैं, ये सब पढ़ने के बावजूद कृष्ण सचमुच में है क्या? कभी कभी 20-20 साल के बाद ये शंका आ जाती है, क्या सचमुच में ऐसे कैसे प्रभुपाद ने बोला हम चंद्रमा में नहीं गए, साफ साफ बोल रहे हैं इधर। बेसिक्स ऐसे कैसे हो गया? धीरे 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 शंकाएं आने लगती हैं, और धीरे 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 हम देखते हैं कि वो व्यक्ति भक्तों के संग से थोड़ा धीरे धीरे दूर जाने लगता है, और भक्तों का संग उसको जमता ही नहीं। यहां कुछ ऊंचे चीज को ढूंढते, यहां मेरे को नहीं मिला, कहीं और जगह कोई ऊंचा चीज दे रहा है वो। उस तरह से इससे ऊंचा कोई है ही नहीं। अनर्पित चरिंचिरात करुणया अवतीर्ण कलो, बता रहे थे कि पहला चार अध्याय चैतन्य चरितामृत का जिस व्यक्ति ने अपने हृदय से समझ लिया, वो व्यक्ति इसको छोड़कर कहीं और ढूंढने नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि उसे मालूम है इससे ऊंचा कुछ है ही नहीं। तो सिद्धांत बोलिए चित्ते ना करो आलस, ये आधार जो है भावनाओं, भावना अल्टीमेटली भावना है, कृष्ण भावनामृत संग ही है, एक्चुअली भावनामृत है, पर भावुक कृष्ण भावुकता संग नहीं है ये, भावुक लोगों का। प्रकाशानंद सरस्वती ने यही सोचा, भावुक हो या नाचो भावुके रसने, ये क्या है हरे राम हरे कृष्ण नाचते रहते हमेशा, अरे तुम संन्यास लिए हो, वेदांत पाठ करो, वेदांत का आधार होना चाहिए, माया में गिर जाओगे नहीं तो। उन्होंने सही कहा, मायावादियों को तो वेदांत पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि भावना है ही नहीं उनको, तो आधार भी नहीं है, बिल्डिंग भी नहीं है, फाउंडेशन भी नहीं है, क्या तुम्हारा फिर? उनके लिए वेदांत के अलावा कुछ है ही नहीं। पढ़ते रहो क्योंकि माया से हमेशा लड़ते रहना पड़ेगा, माया है ही नहीं बोलते वो, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, उसी से लड़ते रहो बस जिंदगी भर, इसीलिए कुछ नहीं खा सकते वो। आप देखोगे मायावादी शुष्क, इतना कठोर होते हैं ना, भक्तों से ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। एक मायावादी ब्रह्मचारी का बुक मैंने पढ़ा था कई साल पहले, जिंदगी में कभी फ्राइड आइटम नहीं खाना चाहिए, जिंदगी में कभी स्वीट नहीं खाया उन लोगों ने, नहीं तो सन्यासी मेंटेन होगा ही नहीं 100%। तो हम लोग तो हर रोज फीस्ट, कोर्स भला ना खाई बे यार भला ना परिबे, महाप्रभु ने कहा, खास करके वैरागी लोगों के लिए अत्याहार प्रयास है, पर फिर भी हाँ प्रसाद आया तो ले लेना चाहिए मित मात्रा में, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। पर मायावादियों के लिए इतना कठोरता हो चाहिए, क्यों? क्योंकि देर इज नो रस, उनको रस नहीं है, रस कैसा होगा? अगर भगवान का रूप ही नहीं मानते तो उनकी सेवा कैसे करेंगे? इसीलिए ये सब उनके लिए सिद्धांत बहुत जरूरी है, पढ़ते रहो घंटों भर पढ़ते रहो बस। वेदांत शास्त्री सु सदा रमंत कौपीनवंत खलु भाग्यवंत, शंकराचार्य का कहना था। बस वेदांत पढ़ते रहो। तो बोले ये क्या भावुकता है, तुम नाचते घूमते फिरते रहते हो। तो महाप्रभु ने कहा मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं अपने गुरु के पास गया और गुरु ने बोला तू मूर्ख है, तू वेदांत मत पढ़ना। गुरु मोरे मूर्ख देखी करेला शासन। बोले तू मूर्ख है, तेरे वेदांत पढ़ने का तेरा अधिकार है ही नहीं कलयुग में, इसलिए काम कर तू हरिनाम ले तेरे पास। और हरिनाम ले रहा तो मैं पागल हो गया, भावनाओं से पागल हो गया, तो मेरे को लगा कुछ पागल हो गया हूं मैं, इसलिए गुरु के पास गया। तो उन्होंने कहा कि ये जीवन की परिपूर्णता है, वेरी गुड, मैं भी यही चाहता हूं। तो फिर पर वही महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती को जब पूछे, ठीक है श्रीपाद, आप ये मानते हो ठीक है कि आप लोग वेदांत वेदांत, तो उन्होंने स्थापित किया कैसे हरिनाम जो है ये सिद्धांत का अंतिम है, सिद्धांत की सीमा है हरिनाम लेना, उसको स्थापित किया वेदांत सूत्र के आधार पर। फिर उन्होंने प्रकाशन सर ठीक है वो सब करते हो पर आप वेदांत क्यों नहीं पढ़ते। बोले क्यों वेदांत नहीं पढ़ रहे, वेदांत पढ़ते हैं हम लोग, जिस व्यक्ति ने वेदांत सूत्र लिखा उसी ने उसका भाष्य भी लिखा श्रीमद् भागवतम। भागवतम ही वेदांत सूत्र का सार है, भाष्यकार वेदांत का भाष्यकार ने ही उसका सरल टीका जिसको आराम से रसमालयम, अरे रस के साथ डाल के दिया है। वेदांत सूत्र बड़ा शुष्क है पर उस उन्होंने उसके ऊपर एकदम फर्स्ट क्लास उसको मतलब पानी डाल के उसमें कुछ मिला विला के एकदम जूस जैसा बना दिया। कोई ड्राई आइटम खाने नहीं होता ना कभी कभी, कभी दवाई दवाई खाने नहीं होता लोगों को, बहुत कड़वा दवाई होता है खाने नहीं होता, तो उसको जूस में डाल के बच्चों को उसमें मिक्स कर देते, बेटा पी ले अच्छा है ना, जूस जूस जैसा जाता है वेद में दवाई भी जाता है। तो वेदांत सूत्र बड़ा शुष्क है, ड्राई है अगर कृष्ण प्रेम नहीं है तो, और जिसको समझ में नहीं आता है। पर श्रीमद् भागवतम कथा के रूप में कथा में उसमें डाला हुआ है पर वही वेदांत वही निष्कर्ष आता है। और सारे आचार्यों ने ये लिखा है, आज जीव गोस्वामी का आविर्भाव दिवस है, वामन द्वादशी, एक्चुअली एकादशी द्वादशी दोनों तिथि एक साथ आती है, आज जीव गोस्वामी का आविर्भाव दिवस भी है। जीव गोस्वामी ने हमारे सारे षट गोस्वामियों ने खास करके, और रूप गोस्वामी ने भी भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ जो लिखे, और खास षट गोस्वामियों से जीव गोस्वामी ने जो सिद्धांत का आधार दिया हमारे गौड़ी वैष्णव संप्रदाय को, अद्वितीय पूरे इतिहास में, न भूतो न भविष्यति। वाराणसी का वो जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहां एक पूरा डिपार्टमेंट जीव गोस्वामी के पुस्तक को अध्ययन करने की, एक संपूर्ण डिपार्टमेंट जीव गोस्वामी के पुस्तकों का अध्ययन करने के लिए, 200,000 संस्कृत श्लोक लिखे हैं वो, 25 पुस्तक से ज्यादा, उसके अलग 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 टीका है सब इत्यादि, षट संदर्भ, खास करके षट संदर्भ उनका बहुत प्रसिद्ध है। इस तरह से शास्त्र के आधार पर उन्होंने स्थापित किया है कि कोई भी व्यक्ति आपको पूछे ऐसे कैसे आप मानते हो कृष्ण, ऐसे कैसे चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, अरे आप इसीलिए आप हरे कृष्ण में, इसीलिए आपका गुरु जो है वो भगवान है क्या, हर एक व्यक्ति अपना अपना कहेगा वो भगवान है। बोले नहीं, ये देखो गुरु भगवान के लक्षण क्या है, कृष्ण किस तरह से कृष्ण को भगवान मानते, कृष्ण को भी कैसे आप भगवान मान सकते हो, पूरा विज्ञान, सारे प्रकार के जो हमारा वाद विवाद आ सकता है सब प्रकार के वाद विवादों को लेके सिस्टमैटिकली उन्होंने तोड़ के रखा है। शास्त्र पे कैसे विश्वास करे, उनका ही है एक्चुअली, प्रभुपाद जो लिखते हैं ना, भ्रम प्रमाद विप्रलिप्स करण पाठव ईश्वर वाक्य नहीं दोष ही सब, चार प्रकार के जो दोष है प्रभुपाद जी ईशोपनिषद के शुरुआत में लिखते हैं, इंट्रोडक्शन टू द वेदास, वो कॉन्वे हॉल का लेक्चर, उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये शुरू से करते, वेदा मतलब क्या, क्यों हम वेदों को स्वीकार करते हैं, सबसे पहले एक तो कॉमन होना चाहिए, तुम्हारा ज्ञान हमारा ज्ञान का आधार क्या है। तो इतने सुंदर तरीके से जीव गोस्वामी ने अपने षट संदर्भ के द्वारा ऐसा फाउंडेशन दे दिया है कि कितना भी बड़ा बिल्डिंग बनाओ हिलने नहीं वाला हो। भक्ति का बिल्डिंग है, भावनाओं का बिल्डिंग है हमारा भक्ति का, पर वो भक्ति का आधार जो है, पुस्तक ही आधार, प्रभुपाद ने भी कहा ना, बुक्स आर द बेसिस। हम कुछ भी जो करते हैं, ये जो हम लोग भक्ति कर रहे हैं, ये भक्ति भी कैसे करनी चाहिए, कोई भी कह सकता है कल से हम लोग ऐसा करेंगे, ऐसा उल्टा घुमाएंगे आरती, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कीर्तन, कीर्तन भी कभी कभी हम लोग अच्छा लगता है कीर्तन या लोगों को, कुछ एक प्रकार का एक खुजली है नया नया कुछ तो करना। जयद्वेद महाराज एक पूरा सेमिनार दिए कीर्तन क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। कई बार प्रभुपाद जी ने बहुत कठोर शब्द में बोला, ऐसा नहीं कुछ भी, निताय गौरंग आधा घंटे क्या कर रहे हो, निताय गौरंग हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। तो कभी कभी क्या है, भावुक में आके अच्छा है कभी कभी बीच में, पर क्या हो जाता है धीरे 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 जो सीनियर करेंगे वो जूनियर को लगता है वही भक्ति है, वही भक्ति, और धीरे 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 एक थोड़ा डिविएशन हुआ बाद में कहीं और चला जाता है हमारा। जो भी पद्धति है भगवान की सेवा का पद्धति, इसीलिए आचार्यों ने न केवल शास्त्र के द्वारा उन्होंने फाउंडेशन बना के दिया है क्या करना है क्या नहीं करना है। वैष्णव और ये जो गोपाल भट्ट गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने हरिभक्ति विलास, सारे विधि, पूजा विधि, संस्कार की विधि, सबको विधि बना के दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं भक्ति में, जो भी कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन परो, ठीक है किस तरह से करना चाहिए, नाना शास्त्र विचारणैक निपुणौ सद्धर्म संस्थापकौ, हमेशा रामानुजाचार्य भी ऐसे ही, मैं गया था परसों मेलकोटे गए थे हम लोग, रामानुजाचार्य जैसे ये हार समझ लीजिए, मोतियों का हार में एक ये होता है ना पेंडेंट लॉकेट है? हार होता है, हार के बीच में लॉकेट होता है ना, बोले रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के लॉकेट हैं। उनसे पहले बहुत सारे आचार्य आए, उनके बाद बहुत सारे आचार्य आए, पर उनको राजा रामानुजा श्री संप्रदाय क्यों बोला जाता है और उसमें रामानुजाचार्य को क्यों माना जाता है। रामानुजाचार्य के पहले भी आलवार हुए, कई सारे आलवार हुए, यमुनाचार्य, नम्मालवार, बहुत सारे आलवार हुए, 12 आलवार हुए, उन्होंने भी बहुत सुंदर भजन लिखे हैं दिव्य प्रबंधम बोल के, और केवल उसमें कृष्ण का गुणगान है, कृष्ण के साथ आदान प्रदान। हांडाल बोल के एक उनमें से स्त्री एक ही आलवर है, इतने सुंदर भक्तिमय भजन। ये भजन क्या है, हम जो भी भजन पढ़ते हैं वैष्णव भजन पुस्तक में भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा लिखित, केवल दीज आर आउटपोरिंग ऑफ ए डिवाइन एक्सटेसिस, दिव्य आनंद जब ओवरफ्लो हो जाता है ना उनके हृदय से, वो भजन के रूप में निकलता है। ये आनंद के भावनाओं को प्रस्तुत किया है, तो ये भजन कोई भी गा सकता है। और हमने देखा है, एक्चुअली मैंने देखा है वृंदावन में, हम लोग एक जगह गए थे बहुत पहले, ऐसा रो के गाते हैं गुरुदेव, ऐसा खींचते वो लोग, ऑफकोर्स मैं गाऊंगा तो गधा जैसा लगेगा, पर वो लोग जब करते हैं ना आमने सामने जितने लोग सब रोने लगते, आमने सामने मैं एक्चुअली देखा हूं, इस तरह से वो गाते सब रोने लगते, पर उनका परफॉर्मेंस के बाद बाहर जाके बीड़ी फूकते वो लोग। तो ये आचार्यों के, तो ये आलवर लोगों ने जो दिव्य प्रबंधन दिया है, सुंदर सुंदर भगवान के भजन, जिनको केवल गा के आनंद अपने अपने जीवन सफल कर सकता है, केवल इसको गा के, क्योंकि इसके अंदर सिद्धांत भी है। पर रामानुजाचार्य ने इस सारे भावनाओं का आलवार के जो जितने दिव्य प्रबंधम हैं, 4000 सुंदर भजन, इसको उन्होंने फाउंडेशन दिया श्री भाष्य देकर। जिस तरह से हमारे संप्रदाय में गोविंद भाष्य बलदेव विद्याभूषण ने देकर उसको, ऑफकोर्स जरूरत नहीं था, पर उस समय के लोग कह रहे कि नहीं आप लोगों का एक वेदांत सूत्र का भाष्य नहीं है, बोले हैं भागवतम ये, नहीं नहीं ऐसा हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे, संप्रदाय का एक भाष्य होना चाहिए, चलो गोविंद भाष्य दिया। इस तरह से रामानुजाचार्य ने श्री भाष्य दिया, इसीलिए उन्होंने विग्रह की स्थापना की, दिव्य उनको मतलब भगवान के संपर्क में थे, वो उनको प्रकट होते थे कि किस तरह से ये विग्रह है, ये विग्रह को निकालो यहां से, जैसे हम रूप गोस्वामी का सुनते हैं, राधा गोविंद देव प्रकट हुए, उनको स्फूर्ति मिली, लीला स्थल की स्थापना किए, मंदिर की स्थापना किए, मंदिर में पूजा का विधान दिखाए, सुंदर सुंदर और शास्त्रों का आधार दिए, और विधि कैसा होना चाहिए, सेवा कैसी होनी चाहिए। 1100 साल से आज तक, 12 साल रहे थे रामानुजाचार्य केवल उधर मेलकोटे में, आज तक एकदम परफेक्ट परंपरागत जैसा उन्होंने बताया था उस तरह से चल रहा है, इतना भी डिविएशन नहीं। क्यों? क्योंकि शास्त्र के आधार पर, नहीं तो फिर भावुक हो जाएगा कोई भी व्यक्ति, कुछ भी बोलेगा, कुछ भी करेगा, अपनी मेरे को इच्छा लगा, कोई भी लाके कुछ भी रखना, कुछ भी करना। तो शास्त्रों का आधार होना जरूरत है हर एक चीज के लिए। तो गोस्वामियों ने हर एक चीज को डॉक्यूमेंट करके रखा है, किस तरह से करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। राधा रमन मंदिर में आज भी जो विधि होती है, 400 साल पहले गोपाल भट्ट गोस्वामी ने जो किया था, एग्जैक्टली वही चल रही है। प्रभा ने कहा था, उनसे जाके सीखो, उनका पूरा डीटी वर्शिप का उधर देखो किस तरह से वो लोग करते हैं, सख्तता से वो लोग पालन करते आए। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद जी ने भी बहुत ही सिंपल करके दे दिया हमें, पर सिद्धांत नहीं होगा, केवल भावनाएं हो जाएंगी, और धीरे धीरे अगर हम डिबेट भी हो गए तो पता भी नहीं लगेगा, इसीलिए कहते हैं सिद्धांत। और दूसरों को भी कन्विंस नहीं कर पाएंगे, ये तीन स्तर जो होता है ना, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी, एक अधिकार जो है वो सिद्धांत के आधार पर भी है। कनिष्ठ अधिकारी क्या है, अच्छी भावना है उसकी, सब लोग कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, अच्छा लगता है मेरे को जब करने में, बस कल किसी ने कुछ और बता दिया और उसको और अच्छा लगा तो ये छोड़ देगा, आधार नहीं है उसका। तो भावना, अच्छी भावना ठीक है, बट कुछ समस्याएं आ जाएंगी जीवन में, तूफान आ गए, एक बिल्डिंग बनाया आपने, और बिल्डिंग बनाने के पहले सबसे पहले गड्ढा खोदते हैं हम लोग, बिल्डिंग बनाते ऊपर, पहले पहले सातवां माला क्यों नहीं बनाते, बाद में छठा, बाद में पहला, बाद में खड्डा खोदेंगे, पैसा मिला तो बाद में खड्डा खोदेंगे, क्योंकि सातवां माला बनाना अच्छा है ना, उसका कोई खर्चा ही नहीं है ना, नीचे आधार डालने का कोई जरूरत नहीं, पर नहीं वो टिकेगा नहीं, वो थोड़ा भी हवा आ गया, तूफान आ गया तो सब धस जाएगा। और कितना पैसा खर्चा होता है गड्ढा खोद के पत्थर डालने में, कोई देखता भी नहीं है उसको, कभी कभी लगता है ना कि इतना पैसा बर्बाद होता है, इतना गड्ढा खोदना, इतना बनाना, फाउंडेशन डालने में कभी कभी अगर वो एकदम ढीला मिट्टी होता है ना, तो उधर तो ज्यादा अंदर जाके जब तक स्ट्रांग ग्राउंड नहीं मिलता ना, तब तक खोदते हैं उसको, खोदने के बाद फिर उसके ऊपर आधार डालते हैं, तब जाके बिल्डिंग बनाते हैं। बिल्डिंग देखने में कितना अच्छा लगता है, रहने में कितना अच्छा लगता है, पर उसके पहले आधार बनाने में सबसे ज्यादा पैसा उसमें जाता है। तो कोई बोल सकता है क्यों इतना करना है, क्या तकलीफ है, नहीं, बुद्धिमान व्यक्ति को मालूम है। तो इस तरह से ये भक्ति जो भावनाएं हैं, ये भावनाएं बहुत अच्छी है, पर जिंदगी भर अगर रहना है, समस्याओं के दौरान भी अपने भावनाओं को खोना नहीं है, अपने निष्ठा श्रद्धा को खोना नहीं है। हमारे एक डिवोटी हैं देवानंद पंडित प्रभु, वो मिलिट्री में थे, पहले नेवी में थे, उन्होंने एक बड़ा अच्छा इंग्लिश एक कहावत कहा, मिलिट्री में उनको एक सिखाते हैं द मोर यू स्वेट इन पीस टाइम द लेस यू ब्लीड इन वॉर टाइम. द मोर यू स्वेट इन पीस टाइम द लेस यू ब्लीड इन वॉर टाइम. मतलब जब शांत है जितना पसीना निकालोगे उतना जब लड़ाई होगा उतना कम खून निकलेगा. यानी क्या, जब लड़ाई नहीं है, अभी लड़ाई हो रहा है, इधर ट्रेनिंग दे रहे हैं कैसा बंदूक पकड़ने, अरे लड़ाई हो गया उधर, लड़ाई नहीं, लड़ाई होने से पहले जब शांत समय है उस समय जितना अभ्यास करोगे जितना पसीना निकालोगे उतना लड़ाई के समय कम खून बहेगा, क्योंकि तुम इतने दक्ष हो गए हो कि कितना भी बड़ा लड़ाई हो युद्ध हो उसमें एक्सपर्ट होने के कारण तुमको मालूम है कैसे शत्रु को मारने का बिना घायल हुए, कम से कम घायल हुए शत्रु को नष्ट कर देने का, घायल नहीं मार देने का जान से. इस तरह से समस्या आने पर पुस्तक देखे, अभी क्या कहते हैं प्रभुपाद जी इसके बारे में देखेंगे, नहीं होने मुश्किल है उस समय ना इच्छा होगी ना टाइम मिलेगा ना ये सब. तो जब अच्छा चल रहा है, सबसे बड़ी लड़ाई है मृत्यु के समय, प्राण प्रयाण समय कफवात पितई कंठावरोधनमिदौ स्मरणं कुतस्ते अद्यैव मे विशतुमानस राजा. अब भी मेरा सब स्वास्थ्य ठीक ठाक है ना, समय है ना मेरे पास, पढ़ लो सिद्धांत बोलिया चित्ते ना करो आलस, आलस मत करो, भक्ति शास्त्री कर लो. भक्ति प्रभुपाद ने एक चाहा, एक्चुअली हर एक व्यक्ति को चाहिए, ये नहीं क्या सर्टिफिकेट है मेरा नहीं तो दीक्षा ही नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है. भक्ति शास्त्री का मतलब क्या, भक्ति शास्त्रों में निपुण हो जाओ. किस लिए, सर्टिफिकेट दिखाने के लिए नहीं, या कोई एक दीक्षा लेने के लिए, या उसके लिए नहीं. ये जब लड़ाई आएगी जीवन में, समस्याएं आएंगी मन के स्तर पर, सुख दुख शीत उष्ण मान अपमान, इस तरह के अलग अलग जो अपने पूरे बुनियाद जो फाउंडेशन को हिलाने वाले जब तूफान आएंगे जीवन में, तब अगर हमने ज्यादा पाया को गहरा बनाया है और समझा है कि नहीं 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 ऐसे 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 बहुत सारे आए हैं, ये सब आते रहेंगे, हमें मालूम है, सब तरीका मालूम है. एक्चुअली लोगों को सिखाया जाता है, जो एंटी टेररिस्ट लोग हैं उनको बताया जाता है टेररिस्ट का क्या 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 समस्या होता है, इधर से आ सकते उधर से आ सकते, सब कोई नो सरप्राइजेस, नो सरप्राइजेस फॉर ए ट्रेन्ड कमांडो. उसको कभी सरप्राइज अटैक उसके जीवन में कभी नहीं आएगा, उसको मालूम है सब प्रकार के सरप्राइज किस प्रकार के आ सकते, कौन कौन सी हाई दश दिशा कहां से आ सकते हैं, किस प्रकार के आ सकते हैं, सब मालूम है. जैसे जो एक अच्छा विद्यार्थी है हर रोज अपना अपना होमवर्क करता है उस दिन का, उसके लिए देर इज नो सरप्राइज टेस्ट, देर इज नो सरप्राइज एग्जाम, कभी भी एग्जाम देंगे तैयार है. क्यों, रेगुलर ट्रेनिंग है. सडनली अगर मृत्यु आ जाएगी तो एक मिनट प्रभु थोड़ा मेरा बाकी है, नहीं होगा उस समय नहीं बोल सकते हम. तो हर एक दिन का हमारा अगर जो ये है नाना शास्त्र विचार नहीं कर निपुण सद्धर्म संस्थापक, तब वो और सच्चा वैराग्य सच्ची भक्ति विद्वत्ता ये सब आ जाएगी ऑटोमेटिकली. इसीलिए प्रभुपाद ने कहा हमने अभी दूध अभी बहुत बढ़ा दिया, मतलब दूध में पानी डाले जा रहे हैं. जब क्या होता है घर में अगर ज्यादा अतिथि लोग आ गए क्या करेंगे, ये क्या बोल, दाल कम है और सडनली देखे कि 11 लोग आने वाले थे अपेक्षित, अभी 25 लोग आ गए, स्वाहा थोड़ा. पर अगर 25,000 लोग आ गए तो, और पानी डालते रहे तो नल के नीचे रख दिया तो दाल का बर्तन को, दाल कम और पानी ज्यादा हो जाएगा. तो एक स्तर पर प्रभुपाद ने बोला अभी तुमने बहुत प्रचार कर दिया, किसको भी पकड़ के तुमने शेविंग करके अंदर ले आया, बहुत अच्छी बात है, अभी समस्या और ज्यादा हो जाएगी अगर इन लोगों को ट्रेनिंग नहीं दिया तो. बोले अभी दूध उबालो, अभी बहुत हो गया, जो है उसको उबाल के थोड़ा घनिष्ठ करो, फिर और थोड़ा डालना, और थोड़ा डालना, घनिष्ठ होने के बाद और थोड़ा चलेगा. दिस इज बॉइलिंग द मिल्क, ये जरूरी है. और तब हम देखेंगे दुर्भाग्यवश समस्याएं क्यों आती है. सो मेनी प्रॉब्लम्स, लैक ऑफ फिलोसॉफिकल ट्रेनिंग, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड. ये दुनिया है क्या, ये अगर समझेंगे नहीं तो छोटी 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 तूफान आ जाएंगे तो हमारा बिल्डिंग धस जाएगा, क्योंकि आधार ही नहीं है. बार बार लुढ़कते रहेंगे हम लोग, बस फिर चले जाएंगे, फिर आएंगे, फिर चले. मनुष्य मतलब कितना दुर्लभ है मनुष्य योनि, उस दुर्लभ योनि में भी एक शुद्ध भक्त का संग कितना दुर्लभ है, भक्ति का मिलना कितना दुर्लभ है. और ऐसे चले जाएगी हमारी जीवन देखते देखते. बाद में रोके क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत. तो जब है, जब भगवान ने शक्ति दिया है, जब समय, समय दिया नहीं है, समय निकालना पड़ेगा. जो जरूरत चीज है उसके लिए हम समय निकालेंगे, हमारे ऊपर. तो ये वो कृष्णदास कविराज बोले, सिद्धांत बोलिया चित्ते ना करो आलस, यहां हुई थे कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस. और हमारे लिए कोई बड़े बड़े शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो प्रभुपाद ने दिया है, जो प्रभुपाद ने दिया. भोरीजन प्रभु लिखते हैं, बोले उसी शास्त्र को बार बार पढ़ो, क्योंकि ये शास्त्र कृष्ण से अभिन्न है. वही तात्पर्य में आपको ऐसी गहरी सिद्धांत नजर आएगी जो आप सोचोगे अरे मैं तो कभी देखा ही नहीं था, ऐसा सोचा ही नहीं था. वही नाम है हरे कृष्ण महामंत्र. पर अगर प्रॉपर एटीट्यूड, अगर हम अप्रोच हमारा प्रॉपर एटीट्यूड होता है उसका, तो उसमें ऐसा नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, पूरा शक्ति भगवान ने अपनी अचिंत्य शक्ति उसके अंदर डाली हुई है. पर हम अनुभव क्यों नहीं कर रहे डायरेक्टली अभिन्नत्वात नाम नामिनो, क्यों नहीं है ऐसा, क्यों? क्योंकि बहुत ऊपर से, मतलब एक हनी का बॉटल है, ऊपर से चाट रहे, हमने ढक्कन खोला ही नहीं. ढक्कन खोलने का मतलब है थोड़ा अंदर घुसना. घुसना कैसे? मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च. तुष्यंती, तुष्यंती मतलब सेटिस्फैक्शन, एंड रमंती मीन्स एंजॉयमेंट. किसको तृप्ति नहीं चाहिए, किसको आनंद नहीं चाहिए, पर भक्तों का आनंद यही है. मैंने आज ये सुना, वाव, ये लीला में मैंने ऐसा, मतलब इसने, इन्होंने ऐसा कहा, ऐसा, वाह रियली, ये संतुष्टि है. ये संतुष्टि जो है आत्मा को संतुष्ट करती है, और ये आनंद आत्मा को आनंद मिलता है. नहीं तो क्या होगा, निश्चित रूप से श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येय पूज्यस्य नित्यता, ये चार चीज तो होना ही है. प्रभुपाद कहते हैं आपको हमेशा किसी न किसी के बारे में सुनना ही पड़ेगा, किसी न किसी बोलते रहते हैं, किसी के बारे में ध्यान करते रहते हैं, किसी को पूछते रहते हैं. पर अगर वो, इसीलिए आचार्यों ने इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं, इतने सारे ग्रंथ लिखे, एक जीवन काफी नहीं पढ़ने के लिए. तो अगर थोड़ा गहराई में जाएंगे और अध्ययन करेंगे और आपस में चर्चा करेंगे, और इस चर्चा में ही हमारी तुष्टि, इसमें ही हमारा रमण. और ये क्योंकि परम दृष्टवा निवर्तते, एक उच्च कोटि का रस है, स्वाभाविक रूप से वैराग्य आ जाएगा. आपको अलग से वैराग्य प्राप्त करने की जरूरत नहीं है. एक ऊंचे रस का आस्वादन हो गया तो नीचा रस से आसक्ति चली जाएगी ऑटोमेटिकली, जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाएगा. 50 साल के बाद किसी को बोलना नहीं पड़ेगा कि क्यों इसी चीज में लगे हुए हो, अभी थोड़ा ज्यादा भक्ति करो. स्वाभाविक रूप से हम लोग कृष्ण के नाम के प्रति, भक्तों के प्रति, इस सुंदर गुणों के प्रति, लीलाओं के प्रति आसक्ति बढ़ेगी. ऑटोमेटिकली जीवन सफल हो जाएगा. ये आलस्य को दूर करने के लिए ही रूप गोस्वामी लिखते हैं, उत्साहात. एक भक्त के जीवन में हम देखेंगे ये उत्साह होते नहीं हो, और ये कृत्रिम रूप से ही उत्साह नहीं आएगा, पर कोशिश करना चाहना चाहिए, बार बार वही चीज चर्चा करना. चलेगा और धीरे धीरे आ जाएगा उसमें रस आस्वादन होने लगेगा और धैर्य पर निश्चयात विश्वास होनी चाहिए के इहा होइते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। एक बार उस सिद्धांत से आपने समझ लिया फिर आप कहीं भी चले जाओ वापस वहीं आओगे, कुछ भी आ जाए जीवन में वापस वहीं आएंगे, क्योंकि हमारा वो एंकर, हमारा जो लंगर है वो भगवान के चरण कमलों में बैठ गया है। दूसरा चीज, स्वाभाविक रूप से शुष्क लगेगा, वो ड्राई लगेगा। अलग से वैराग्य की प्रयास करने की जरूरत नहीं है। वासुदेव ने ज्ञान वैराग्य युक्त या प्रथम स्कंद में आता है श्लोक, वैराग्य और ज्ञान एक साथ, वासुदेव की भक्ति से ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाता है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितया जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहितुकम। अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है, जैसा प्रभुपाद यहां लिखते हैं, और कुछ नहीं, रेगुलरली श्रवणम करो बाबा। अंगूठा छाप आदमी को पढ़ने लिखना नहीं आता, कोई जरूरत नहीं, श्रवणम स्थाने स्थित श्रुतिगताम तनुवांग मनोभीर। अपनी बुद्धि से प्रयास करना छोड़ो, श्रवण करते रहो फिर भी आ जाएगी वो, ये प्रायशः अजित अजित हो। तो इस तरह से देखेंगे, जीव गोस्वामी का कभी बाद में चर्चा करेंगे, पूरा लिख के मैं आया था। तो आचार्यों का यही देन है, न केवल उन्होंने एक बिल्डिंग दिया है, पर इस बिल्डिंग को बनाए रखने के लिए, हमारे हृदय में भक्ति का बिल्डिंग, इस समाज का मंदिर का बिल्डिंग, ये बनाए रखना है तो ये फाउंडेशन, ये जो है ये शास्त्र का आधार है। तो आधार भी दे दिया उन्होंने, ये आधार पहले बनाओ और इस आधार पर आप बिल्डिंग बनाओगे तो वो कभी धसेगा नहीं। और बिल्डिंग का उद्देश्य क्या है, आश्रय देना, वो निश्चय रूप से आश्रय देगा हमें, वो मध्यम अधिकारी का लक्षण है। कम से कम उत्तम अधिकारी नहीं बनोगे चलेगा, मध्यम अधिकारी तो बनना चाहिए। मध्यम अधिकारी मतलब क्या, मैं दूसरे को कन्विंस कर पाऊं या नहीं पाऊं, पर मेरी कन्विक्शन को कोई हिला नहीं सकता, मेरा श्रद्धा को कोई हिला नहीं सकता, कोई कंफ्यूज नहीं करा सकता क्यों कृष्ण का किया, और मेरे को ऐसा नहीं, अरे 20 साल से क्या किया, टाइम पास हो गया क्या, अभी पता चला भगवान है ही नहीं, ये तो एक कॉन्सेप्ट है कृष्ण, इतना तो कोई नहीं होगा। भले मैं कन्विंस नहीं कर पाऊं पर मुझे कोई उल्टा कन्विंस नहीं कर सकता, ये मध्यम अधिकारी, इतना स्तर पर तो आना चाहिए। और इसीलिए साधना के रूप में हमें थोड़ा अध्ययन करना चाहिए, एज ए पार्ट ऑफ अवर साधना, बनाए थे बनाए रखना। सिद्धांत बोलिया चित्त ना करो आलस, यहां होते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। मन मन बड़ा चंचल है, हमेशा भटकता रहता है, पर सुदृढ़ मानस। दो प्रकार के मुनि, चार्वाक मुनि और नारद मुनि, स्थितधीर मुनि। स्थितधीर मुनि कौन, नारद मुनि जैसे स्थितधी, कृष्ण प्रज्ञा, कृष्ण चेतना फिक्स्ड एकदम, कहां भी भ्रमण करेंगे पर भगवान के चरण कमलों से हिलेंगे नहीं। और दूसरे मुनि कैसे हैं, एक जगह बैठे हुए हैं हिमालय में, पर उनका मन सब जगह भ्रमण कर रहा है बस, क्योंकि इंद्रियां नियंत्रण में नहीं है, मन नियंत्रण में नहीं। सवय मन कृष्ण पदारविंद यो, फिर अपने आप इंद्रियां आ जाएंगे। ये स्थितधीर मुनि है कि मन भगवान के चरण कमलों में, हृदय भगवान के चरणों में, बुद्धि भगवान के चरण कमलों में। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की, श्री चैतन्य चरितामृत की, श्रील जीव गोस्वामी पाद की, निताय गौर प्रेमानंदी।